16 नंबर के रजिस्टर में 106 दिन, 6/4/88 का पैसे क्लास रिकॉर्ड चला है, आज नहीं तो कल। हाँ जी 6/4/88 रिकॉर्ड चला है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद कबाब, जिसको बच्चे इतना पिता जता होकर याद नहीं करते हैं। कितना पिता बेटा, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है वही बच्चे हैं। बाकी ब्रह्मा कुमारी मुखवंशावली हैं तो बच्चे नहीं क्या? उन्हीं को बाप बच्चे कहेंगे जो ब्रह्मा मुखवंशावली है। तो ब्रह्मा मुखवंशावली का मतलब हुआ कि ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का मुख भी होगा, ब्रह्मा का मुख होगा तो ब्रह्मा मुख की बात मानने वाले, डायरेक्शन पर चलने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भी जरूर होंगे। क्योंकि उनकी संतान बने हैं किनकी? ब्रह्मा मुखवंशावली की संतान बने हैं। उनकी क्यों कह दिया? उनकी तो दूर हो जाता है और इनकी बाजू में हो जाता है, तो उनकी क्यों कहा? शिव जो है, शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन में बाजू में ही बैठा हुआ है, तो ब्रह्मा का तन या ब्रह्मा की सोल या शिव की सोल वो पास वाली हुई या दूर वाली हुई? पास वाली। फिर उनकी क्यों कहा? जरूर कोई भविष्य में पार्ट बजने वाला है बाप का पार्ट, जिस बाप से वर्षा मिलना है। क्योंकि हेवनली गॉड फादर है तो स्वर्ग का सुख का वर्षा देने वाला है, तो उस बाप को बताया कि बच्चे पिता जता होकर के याद नहीं करते कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा कोई नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, सीमित पर चलते हैं, कोई देह अभिमानी के कारण याद नहीं करते हैं। क्योंकि देह अभिमान होगा तो याद ही नहीं आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो निराकारी बाप याद आवेगा, क्योंकि बाप तो देह अभिमानी कभी होता ही नहीं, वो तो है ही निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। तो जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देह और देह के संबंधियों की याद में रहते हैं, पावन नहीं रहते हैं, वो याद नहीं करते। ब्राह्मण तो है ही ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचय का बाप गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में उस रचयिता बाप का गायन है। क्या गायन है? कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते, संतान रचने का माध्यम क्या बताया? ब्रह्मा मुख कमल, ब्रह्मा का मुख कमल है तो संतान भी होती ब्राह्मणों की, ब्रह्मा का मुख कमल नहीं तो ब्राह्मणों की संतान भी नहीं। ब्रह्मा जरूर चाहिए, इसलिए मुरली में बोला ये ब्रह्मा चला जावे तो क्या नई दुनिया स्वर्ग नहीं रखेंगे? ये ब्रह्मा चला जावे तो जिस पन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं मुरली में। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा मुख के वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। एक तो मुख वंशावली हूँ, ब्रह्मा के मुख की बात न माने तो बताया वो हाफ कास्ट ब्रह्मा कुमार है। तो एक तो ब्रह्मा मुख की संतान हो और दूसरा पावन रहने वाला हो। सारा मदार है पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। दुनिया ही कैसी है? अपवित्र और पतित। तो ब्रह्मा के द्वारा जो दुनिया रची जाती है वो कैसी दुनिया होती है? पावन दुनिया ब्राह्मणों की रची जाती है, क्योंकि ब्राह्मण होते ही है नंबर वार पवित्र। पवित्रता का विरुद्ध लेने वालों को ही ब्राह्मण कहा जाता है, विरुद्ध अर्थात प्रतिज्ञा। तो कोई तो अपनी शक्ति प्रमाण उस प्रतिज्ञा को थोड़ा निभाते हैं, कोई ज्यादा निभाते हैं, लेकिन पवित्रता का विरुद्ध लेने वाले वो ही ब्राह्मण है। कितने होते हैं? वास्तव में पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले 16108 ब्राह्मण होते हैं, जो राजघराना तैयार होता है, क्योंकि बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, प्रजायोग नहीं गाया हुआ। तो राज जिसमें भरा हुआ है घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान बुद्धि से न्यारे रहे। तो ऐसा राजयोग जिन्होंने सीखा और परमात्मा बाप ने सिखाया, तो सिखाने वाला स्वयं प्रवृत्ति मार्ग में होगा या निवृत्ति मार्ग में होगा, वो भी प्रवृत्ति मार्ग में होगा। तो इसलिए बताया उनकी शब्द दूर क्यों कर दिया, उनकी संतान बने हैं, इनकी संतान नहीं। यानी जिस ब्रह्मा के मुख के द्वारा गीता सुनाई, तो एक है गीता का ज्ञान सुनना और एक है जीवन में धारण कर लेना और उस ब्राह्मणत्व की स्टेज को पकड़ लेना, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण ही स्वदेवता कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात पवित्र भाई बहन की स्टेज हो जाए। देवभान की बात नहीं, तो बताया ये तो है अपवित्र दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वो पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी जानते नहीं। कई तो कहते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। अब सतयुग त्रेता में तो पतित होने की बात ही नहीं, वो तो है ही पावन दुनिया, शूटिंग पीरियड की बात है। क्या कि सतयुग त्रेता की भी जो शूटिंग होती है, जो पीरियड निर्धा हुआ है, उसमें भी पतित होते हैं, नंबरवार पतित और नंबरवार पावन। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो सब संगमी की यादगार हैं। बाकी सतयुग त्रेता में न कोई असुर होते, न कोई वहां पतित होते। कहते हैं सीता चुराई गई, ये हुआ, पावन दुनिया की ग्लानी करना, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि उनको देखने में आती। पावन दुनिया में पतित हैं तो क्या बाप ने पतित दुनिया रखी? जो जैसा होगा वैसे ही रचना रचेगा ना। एवर प्योर बाप है तो रचना कैसी रचेगा? एवर प्योर रचना ही रचेगा। लेकिन जिनकी दृष्टि ऐसी है, कैसी पतित दृष्टि है, तो बाप को भी किस रूप में देखते हैं? पतित दृष्टि से देखते हैं कि बाप भी पतित हो। जैसे हम संग के रंग में आए जाते हैं, वैसे बाप भी संग के रंग में आता होगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। दुनिया के जितने भी महान से महान आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, राम और कृष्ण, वो सब संग के रंग में आकर के पतित होते हैं। एक ही सुप्रीम सोल बाप है जो साकार पतित तन में आने के बावजूद भी, संग के रंग में इंद्रियों से आने के बावजूद भी पतित नहीं बनता। उसका यादगार मंदिर बना हुआ है गांव गांव में, शहर शहर में, जो शिवलिंग का मंदिर है वो पवित्र मार्ग की पक्की यादगार है कि ऐसे संग में रह करके भी वो पूज्य है। पूजा क्यों होती है और सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? शिव की पूजा होती है और देवताओं के मुकाबले सबसे जास्ती शिव की पूजा होती है। तो पूजा का आधार है प्योरिटी। जिसने जितनी प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी को अपनाया है उसका उतना जास्ती पूजीपने का यादगार मंदिरों में बना हुआ है। पूजा का आधार ही है पवित्रता। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला जिन जिन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहकर कर्म किया है वो इंद्रियां पूजी जाती। तो शिव की और कोई स्वरूप नहीं पूजा जाता, उनका कौन सा रूप पूजा जाता है? उनका सिर्फ गायन है शिवलिंग। तो दूरवाद खुशवाद होकर के तो सब पावन बन लेते हैं। उसमें तो सन्यासी भी बड़े माहिर हैं, घरगात छोड़ गए और पवित्र बन गए, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन घरगस्त की कीचड़ में भी रहे और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि बिल्कुल उपराम, अंश मात्र भी संग का रंग न लगे, इंद्रियों के सुख के ग्रहण करने से परे की स्थित बनी रहे, तो उसको कहेंगे अतिंद्रिय सुख लेने वाला। तो जिनकी दृष्टि ऐसी है वो तो देवताओं के मंदिर में जाकर के भी चीची चीची करते, आंखें बंद कर लेते। जगन्नाथ के मंदिर में सूर्य का जो मंदिर है, कोणार्क का मंदिर, उसमें कितने चित्र देखने में जो आते हैं वो देखने के लिए तो गंदे हैं, लेकिन देखने वालों की ये आंख नहीं समझती है कि आज की गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं है जो उन चित्रों को बंद करवा सके, निकलवा सके। नहीं तो खुले चौराहों पर अगर कोई अश्लील चित्र लगाता है तो गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है, एक्शन ले सकती है। लेकिन आज तक किसी में ताकत है तो जगन्नाथ के मंदिर में जो चित्र दिए हुए हैं उन देवताओं के, उन चित्रों को निकाल के बाहर करे? क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि उनमें असलियत है। क्या असलियत है? तो वो देखने में है कि विकारी है, लेकिन वास्तव में वो विकारी नहीं है। विकारी कहा जाता है पतित को। पतित अर्थात जिसकी मन बुद्धि और शरीर की शक्ति नीचे गिरे, स्त्री और पुरुष की रज और वीर की शक्ति है, वो शक्ति अगर नीचे जाती है तो पतित, और वो शक्ति अगर नीचे नहीं जाती तो पतित कहेंगे? तो पतित नहीं है। तो बताया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बाप को भी इस रूप में समझ लेते हैं। पावन दुनिया में भी पतित हैं तो क्या बाप ने पतित दुनिया रखी? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर के इस सृष्टि को उसने भी खास भारत को पावन बनाओ। पतित पावन आओ ये क्यों गाया गया? गायन पतित पावन के आने का क्यों है? क्योंकि पतित तन में आते हैं और आने वाला है पावन। तन तो पतित है साधारण तन है तो साधारण कर्म ही करेगा, लेकिन कर्म का जो रिजल्ट होगा वो असाधारण होगा। पतित में आता है, आने वाला पावन है, इसलिए पतित पावन कहा जाता है। फिर पतितों के संग में आता है तो पतितों को संग में ला करके पतितों को पावन बनाता है, इसलिए भी पतित पावन कहा जाता है। ये गाय नहीं है कि ज्ञान सुनाने आओ। अहम अध्यक्ष क्या है बुलाने का? पतितों को पावन बनाओ। तो ब्रह्मा के तन में आकर क्या किया? सिर्फ ज्ञान सुनाया या पतितों को पावन देवता बनाया? देवता कोई नहीं बना, क्योंकि यह है डबल मशीनरी। शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाना पड़े और फिर ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाई करके, राजयोग सिखाई करके देवता बनाया जाता है। यह हुई सेकेंड मशीनरी। इसलिए बताया कि पतित पावन आओ और आ करके, ऐसे नहीं जा करके कि आओ और ज्ञान सुनाओ और ज्ञान सुना के चले जाओ और चले जाने के बाद हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, बिंदु को याद करते रहेंगे और पावन बन जाएंगे। ऐसे कोई पावन बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पतित कैसे बने? तो जिस प्रक्रिया से पतित बने हैं उसी प्रक्रिया से पावन बनेंगे। पतित किस तरह बने? अनेकों के संग के रंग में प्रैक्टिकल साकार में आए तो पतित बने। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, धर्म की आत्माएं हैं, वो ढेर की ढेर इस सृष्टि पर आई, जो स्वर्ग की परंपरा को जानती ही नहीं कि स्वर्ग में कैसी परंपरा होती है संतान उत्पत्ति की, वो नहीं जानती कि वहां अव्यभिचारी सृष्टि होती है। तो जो जानते ही नहीं है उनको अव्यभिचारी सृष्टि के ऊपर आस्था नहीं हो सकती, वो तो व्यभिचार ही फैलाएंगे, दृष्टि का करप्शन, इंद्रियों का करप्शन फैलाएंगे। तो उनके संग के रंग में देव आत्माएं धीरे धीरे आती गई। पहले पहले वो देव आत्माएं आई जिन्होंने कम जन्म लिए, जैसे सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ और उसकी प्रजा। क्योंकि कम जन्म लेने वालों का भी कोई हिसाब होगा, जिनके कम जन्म होंगे उनकी कलाएं भी कम होंगी, आत्मा में शक्ति भी कम होगी, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं होगी और बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने वाली वो आत्मा नहीं होगी। कोई न कोई अपने गुरु को मीडिया बनाया होगा, डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा नहीं होगी। तो जिन्हों के अंदर पढ़ाई की कमजोरी रह गई वही आत्माएं धीरे धीरे द्वापर युग से कन्वर्ट होती चली गई। और भारतवर्ष के अंदर भारत की ही देव आत्माएं जब ढेर की ढेर कन्वर्ट हो गई तो अंत में आते आते जो अपने धर्म की पक्की थी, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं थी, उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी रह गई। तो दुनिया में रुझान हो गया ज्यादा व्यभिचारियों का और वो मुट्ठी भर आत्माएं रह गई। तो कलयुग के अंत में आकर के वो भी पतित बन जाती और ही जाति पतित बनती। लेकिन परमात्मा बाप मिलता किसको है? पतितों को मिलता है या पावन को मिलता है? परमात्मा बाप उठाता ही है आकर के पतित गृहस्थी की कीचड़ में पड़े रहने वालों। तो खास भारत को आकर के पावन बनाते हैं।
वाणी में बाबा बोला है, याद लेके चलिए,
याद से विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन किसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं? वो स्वरूप कौन सा है जिसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं? धर्म पिताओं की याद से, बाप की याद से, लेकिन बाप भी तो दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो कौन से बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं? आत्माओं का बाप, यानी सिर्फ बिंदु बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे? क्यों? बिंदु बाप वो आत्माओं का बाप तो है, लेकिन आत्माओं का जो बाप है वो सिर्फ प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो भी निवृत्ति है। जैसे शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो प्रैक्टिकल एक्ट जिससे वो एवर प्योर साबित हो संसार के अंदर, वो कब साबित होगा? जब शरीर में साकार तन में आए तो संसार में उसकी यादगार बने। तो साकार तन में आकर के साकार संग का रंग लगाता है, इसलिए मुरली ने बोला तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। सब कैसे हो जाएंगे? जरूर नंबरवार होंगे, 100% सब पार्वतियां नहीं हो सकती। पार्वतियां माना पार लगाने वाली, यानी सब पूरा पार लगाने वाली नहीं भारत को बन सकती। कोई थोड़ा साथ निभाएंगे, कोई जाति साथ निभाएंगे। इसलिए फिर नंबर बने हुए हैं। गोप गोपियों की संख्या 16,000 गिनाई दी। वर्षा लेने वाले जो विजयी वत्स हैं उनकी संख्या 108 गिनाई गई। विशेष सहयोगी भुजाएं हैं उनकी संख्या 1,000 गिनाई गई। और फिर जो स्कॉलरशिप लेने वाले हैं उनकी संख्या 8 गिनाई गई। और इन सब के बीच में महारानी के रूप में जो राधा गिनाई गई है वो सिर्फ एक ही। ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। क्यों? क्योंकि पूरा जिसने साथ निभाया 100% वो सिर्फ एक ही निकलती, बाकी सब नंबरवार की लिस्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों में हिसाब किताब सबके अलग अलग है। कोई तो ऐसी भी आत्मा है जिसका मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, सारे संगमयुग के पीरियड में जब से ज्ञान में चले और अंत तक ये बुद्धि की स्टेज रहती है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, मेरी जिंदगी को पार लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई तो फिर उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज बन जाता है। तो बताया कि खास भारत को आकर के पावन बनाते हैं और आम सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। अभी ये ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर के रहते हैं। पतितों को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके नहीं कह सकते, वो तो है ही कुकुहंसावली। क्यों कहा कुकुहंसावली? कोको अर्थात गोद, गोद को प्यार करने वाले, गोद को प्यार करने वाले होंगे तो गोद माने शरीर, शरीर की याद हो गई, देह की याद हो गई, देह का आकर्षण खींचेगा। ब्रह्मा के बच्चे बने, कोई तो ब्रह्मा की गोद के आकर्षण में रहे, और कोई ऐसी भी ज्ञानी तू आत्माएं थी और हैं जिनको ब्रह्मा की गोद नहीं याद आती, ब्रह्मा का ठिकाना चुपड़ा गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर नहीं याद आता, उनके मुख से जो वाणी निकली वो वाणी उनको याद आती। क्या कहा? तो ब्राह्मण भी दो प्रकार के हो गए, एक ब्रह्मा की देह को याद करने वाले, क्या पुरुष जो ब्रह्मा की देह को याद करने वाले होंगे वो श्रीमत के बरखिलाफ जरूर चल लेंगे। कौन सी श्रीमत? मुरली ने बोला ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर इस ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जिनको गोद की देह की याद आती रही वो क्या करते, वो उस चित्र को जरूर रखेंगे, क्योंकि उनका तो आधार बन चुका है, वो है ही कुछ वंशावली, गोद की वंशावली। वो जब आए इस रास्ते में तो उनका आधार वो ब्रह्मा का कितना चुपड़ा चेहरा था, ज्ञान उनका आधार नहीं था, ज्ञान के आकर्षण से खींच करके नहीं आए। तो जो ज्ञान के आकर्षण से खींच करके आए वो हुए मुख वंशावली। तो बताया ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग ले, राजा की वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। हम नर से नारायण बने। क्या कहा? अहम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनने का गायन है या नर से प्रिंस बनने का गायन है? नर से नारायण बनने का गायन। ब्रह्मा और सरस्वती की सोल क्या बनती? नर से प्रिंस बनती, प्रिंसेस बनती, या नर से चार अठासी को कहते क्लास, अर्थात पहले पेज का मध्यान्ह। तो राजाई का वर्षा लेने का पुरुषार्थ, अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ चाहिए। हमारा अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने का, नर से प्रिंस बनने का अहम ऑब्जेक्ट नहीं है कि शरीर छोड़ दें और फिर सतयुग में जाकर के किसी राजा महाराजा के यहाँ जन्म लें। तो राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेने वाले वो वर्षा किससे प्राप्त करेंगे? देवताओं से वर्षा प्राप्त करेंगे या डायरेक्ट भगवान से वर्षा प्राप्त करेंगे? देवताओं से वर्षा प्राप्त करने वाले और डायरेक्ट भगवान से वर्षा प्राप्त करने वाले, कितना अंतर हो गया। तो बताया कि चंद्रवंशी में आए तो नारायण नहीं बनते, एक सूर्यवंश नाम है, एक चंद्रवंश नाम है। जैसे कोई राजा रघु हुआ तो रघुवंश नाम पड़ा, शास्त्रों में लिखा है कि रामचंद्र रघुवंशी थे। तो कोई राजा रघु का नाम हुआ ना, कोई रघु नाम का राजा हुआ ना, तो ऐसे ही सूर्यवंश नाम हुआ। तो सूर्य नाम का कोई होगा ना, शास्त्रों में तो जैसा नाम वैसा काम दिखाया हुआ है। तो सूर्यवंश जरूर सूर्य से शुरू होता है, सूर्य उसको कहा जाए जो चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाला होता है। सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन प्रकाश किसी से लेता नहीं, तो जरूर ऐसा कोई पाठधारी चाहिए जो किसी से आत्मा के 84 जन्मों की नॉलेज लेने वाला नहीं होगा लेकिन देने वाला होगा। उसको कोई पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता, वो सुप्रीम बाप होगा, सुप्रीम टीचर होगा, सुप्रीम गुरु होगा, उसको कोई टीच नहीं कर सकता। तो वो हुआ सूर्य, और सूर्य के वंश में जो पैदाइश ले वो हुए सूर्यवंशी। और चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, रोशनी है ज्ञान की। तो ब्रह्मा माना ज्ञान चंद्रमा। ब्रह्मा को क्या बताया मुरली में? ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा। तो जब ज्ञान चंद्रमा टाइटल दे दिया तो जरूर कोई सूर्य है जिसको उस ज्ञान चंद्रमा ने यज्ञ के आदि में रोशनी ली थी, ज्ञान की रोशनी धारण की थी। तो यज्ञ के आदि की बात हो गई कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार जरूर हुए, लेकिन उन साक्षात्कारों के रहस्य को वो नहीं समझ सके, उसके उसके राज को समझाने वाला कोई और था। सिंध हैदराबाद में उनको ये ज्ञान पैदा नहीं हुआ, सिंध हैदराबाद में उनको सिर्फ साक्षात्कार हुए। वाराणसी में भी हूँ लेकिन गुरुओं ने उनको नहीं बता पाया, तो उनको जाना पड़ा पूरी बंगाल में, कलकत्ते में जहाँ उनकी दुकान थी। तो इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है शरत को ढूंढा कहाँ से? पूरी बंगाल। देश तो अपनी ढूंढो, देश को याद रखने की क्यों जगह? बोलने वाला ये है जब बोलता है जगह जगह जाकर के, तो क्या एक एक की डेट याद रखता है? कहाँ क्या क्या बोला कंसल्ट करो। तो पूर्वी बंगाल वहाँ यादगार भी है जहाँ ज्ञान का बीज पहली बार पड़ा, ज्ञान सूर्य जहाँ पहली बार प्रत्यक्ष होता है। सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में निकलता है। भारत के नक्शे में या दुनिया के नक्शे में वो पूर्व दिखाया गया है जहाँ से सूर्य उदय होता है। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो संसेट यादगार कहाँ है? माउंट आबू कहाँ, पश्चिम में है या पूरब में? पश्चिम। वहाँ सूर्य अस्त का यादगार है और जहाँ सूर्य उदय होता है वो हुआ पूरी बंगाल। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये दो वंश गाए गए, इसलिए कि वहाँ सूर्य अस्त हो गया। जो ज्ञान सूर्य है, ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली सोल है, ब्रह्मा के अंदर भी ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन सा प्यार का? माउंट आबू में कहाँ उदय हुआ? सिंध हैदराबाद से ही शुरू हुआ कि माउंट आबू में उदय हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? सिंध हैदराबाद से। लेकिन सिंध हैदराबाद में भी उदय नहीं हुआ। सिंध हैदराबाद में उदय हुआ होता, ज्ञान का बीज अगर सिंध हैदराबाद में पड़ा होता, तो फिर ब्रह्मा बाबा को इधर उधर भटकने की क्या दरकार थी वाराणसी वगैरह में? अपने गुरु से पूछने की क्या दरकार थी? गुरु से पूछा, उसने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। फिर वाराणसी में सोचा कि वाराणसी में बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनसे जाके पूछो, भावी उनको हल नहीं मिला। तो अंत में गए हैं पूरी बंगाल में जहाँ उनको हल मिल गया। तो जिस व्यक्ति से उनको वो ज्ञान का बीज मिला, ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो बड़ी माँ के बुद्धि रूपी पेट में जिसने ज्ञान का बीजारोपण पहली बार किया, वही ज्ञान सूर्य बाप का साकार रूप हो गए। पूरी बंगाल में नहीं यादगार, सूर्यास्त का जो यादगार किया वो तो निकलता ही, सूर्य कहाँ से निकलता है? रोज नक्शे में कहाँ दिखाया जाता है सूर्य उदय? अरे हाँ हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि बाप जब बीजारोपण करता है तो बाप गुप्त होता है और बच्चों के सामने कौन पहले प्रत्यक्ष होता है? माँ प्रत्यक्ष होती। तो छोटे छोटे बच्चे माँ को ही सब कुछ समझ लेते हैं। आज भी जो छोटे छोटे बुद्धि कम अकल वाले बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, वो आज भी ब्रह्मा को ही माँ समझे बैठे हैं और ब्रह्मा को ही बाप समझे बैठे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। बाप पुरुष चोले में और माँ स्त्री चोले में होनी चाहिए, तब कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ब्रह्मा का चोला था पुरुष तन, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले कोई माँ बाप थे, इसका पता नहीं है किसी को। तो वो जो माँ बाप थे यदि के आदमी, जो आदमी सो अंत में प्रत्यक्ष होते, वो ही जगत पिता और वो ही जगत माता। तो हम नर से नारायण बने, चंद्रवंशी में आए तो नारायण नहीं बनते क्या? जो चंद्रवंशी में आएंगे यानी ज्ञान चंद्रमा की संतान बनेंगे तो चंद्रवंशी हुए ना, तो वो डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनेंगे, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं बनेंगे। तो नारायण नहीं बनते, गोया नर से नारायण न बने, क्योंकि विकारी रहे। क्या तो क्या हो गए? विकारी। नंबर वन है काम और सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है किसमें? जो डायरेक्ट बाप से प्राप्ति नहीं कर पाते उनमें कुछ न कुछ भूत रह जाएगा। इसलिए महाभारत गृह युद्ध किसने कराया? किसको दिखाया है? किसने गृह युद्ध कराया? कृष्ण ने कराया। तो कैसा क्रोधी हुआ? कृष्ण और प्रायश्चित की राशि मिलाते हैं बाबा, क्योंकि क्रिश्चियन में भी ऐसा क्रोध होता है। कैसा? ठंडा क्रोध, बाहर से नहीं देखने में बच्चे बच्चे अच्छे अच्छे, और अंदर से सब समझ लिया कि अच्छे हैं कि कितने कच्चे हैं। तो मौका आता है और उनको दंड मिलता है। वही ब्रह्मा की चोल, जिस ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाया, सुप्रीम सोल ने, जिस ब्रह्मा को ब्राह्मण बच्चों ने सुख नहीं दिया, सबकी बात नहीं है क्योंकि ये तो गारंटी है कि ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को सुख दिया, दृष्टि से वृत्ति से वाइब्रेशन से सुख दिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने दुख नहीं दिया। जरूर ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बिच्छू टिंडन के मौखिक दुख दिया है। तो ये अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म में जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ सोल को, जो सृष्टि का पहला पत्ता है, ऐसी श्रेष्ठ सत्व प्रधान आत्मा को भी दुख देने का अंतिम जन्म में कर्म बंधन बांध लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि लौकिक दुनिया में जो पाप कर्म किया जाता है उसका एक गुना बोझा करता है, और ब्राह्मणों की दुनिया में 100 गुना पाप का बोझा करता है। तो छोटे मोटे व्यक्ति के साथ पाप कर्म किया जाए तो उतना उसको दंड नहीं मिलेगा, और किसी बड़े आदमी के साथ वो पाप कर दिया जाए मान लो कोर्ट में जज बैठा है और उसको कोई झापड़ मार दे और भाग जाए तो एक्शन करा लिया जाएगा ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ सोल को जिन्होंने दुख दिया उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतुर में? अरे ये 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। तो इसी अंतिम जन्म में भी जो बोला हुआ है, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में के भी अंत में आकर के तुम बच्चों से मिलता हो, तो जरूर वही कृष्ण की सोल, वही ब्रह्मा की सोल जिसे बच्चों ने दुख दिया है, आखिरी बच्चों ने जो किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, और उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके वो जो 100 गुना पाप का बोझ है जिन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया है उनसे हिसाब किताब पूरा कर लेती। तो शंकर का पाठ किसका हुआ? ब्रह्मा वाली ही सोल वही प्रवेश करके पाठ बजाती है। इसलिए मुरली ने बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर को पतित आत्मा नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर तो सूक्ष्म बतनवासी, उसको पतित नहीं कहेंगे। शंकर कुछ करता भी नहीं क्योंकि कर्म तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है। इन वो आत्मा ऐसे कोई कर्म नहीं करती जिससे किसी को दुख हो। वास्तव में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके सारा कार्य करती, शिव की सोल उसमें प्रवेश करके वाणियों का एक्सप्लेनेशन देती। ब्रह्मा की सोल वाणी को पढ़ने वाली है और शिव की सोल एक्सप्लेनेशन देने वाला टीचर है, ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाला स्टूडेंट है। जैसे और सब स्टूडेंट हैं, ब्रह्मा की सोल भी इस समय स्टूडेंट। तो बताया कि जो डायरेक्ट बाप से शरीर के रहते वर्षा नहीं लेते, डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते, उनमें कोई न कोई क्रोध आदि का भूत रह जाता है। तो कृष्ण की सोल में भी कौन सा भूत रह गया? साकार शरीर छोड़ने के बाद ही भी कौन सा भूत रह गया? क्रोध का भूत रह गया। ये कहते हैं कि साकार जीवन में जो आंख पूरी नहीं होती है और कोई अचानक शरीर छोड़ देता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर के वो अपनी वासना पूरी करनी पड़ती है। तो भाव स्वभाव संस्कार से तो उन्होंने माँ का पाठ बजाया, प्यार भरा, लेकिन अंदर से उन बच्चों के प्रति वो क्रोध की वासना भरी रही। माँ तो बेचारी बाप के न मौजूदगी में ना मौजूदगी में पर ही क्या सकती है, आसुरी बच्चे तो माँ के ऊपर हावी हो जाते। तो उस साकार कर्म के रहते ब्रह्मा माँ कुछ कर नहीं सकी, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो ही सोल जो बीज रूप बाप है उसका आधार ले लेती। शंकर के मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा किसकी यादगार है? ब्रह्मा की सोल की यादगार। तो जिसको अपना बिछड़ा हुआ पति मिल जाए तो वो फिर क्या बच्चों से दब के रहेगी क्या? उसको फिर बच्चों से दबने की बात नहीं है। तो वो बीज रूप स्टेज में रहने वाली ब्रह्मा की सोल शंकर के थ्रू जब प्रत्यक्ष होती है तो पता नहीं चलता है कि कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही है, क्योंकि एक ही शरीर और 3 आत्माएं पार्ट बजाने वाली कौन कौन थी? शिव सुप्रीम सोल और प्रजापिता मन राम की सोल और ब्रह्मा की सोल। तो नाम हो गया शंकर, कहते ना वर्ण शंकर, शंकर माना मिक्स, पता ही नहीं चलता कौन सी सोल पार्ट बजाय रही। ज्ञान के आधार पर तो ज्ञानियों को तो पता चलना चाहिए तो बताया कोई न कोई क्रोध आदि भूत रह जाता है, इसलिए कृष्ण की राशि किससे मिलाई? कृष्ण से मिलाई। कृष्ण में कौन सा भूत? इसके अंश में कौन सा भूत दिखाया? क्रोध। ऐसा क्रोध होने के अंदर भरा हुआ है कि अंत में सारी सृष्टि का विनाश करा देंगे। तो ब्राह्मणों का भी सृष्टि का जो विनाश है वो किसके द्वारा? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। बारह राशियां होती हैं, कुंभ राशि, मेष राशि, कन्या राशि, वृष राशि। बारह राशियों में सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सब बटे हुए हैं। तो ऐसे ही त्रेता युग में जो बारह गद्दियां हैं, उन बारह गद्दियों के जो मालिक होंगे, राजा होंगे, वही बारह राशियां होगी। उनमें से आठ राजाएं ऐसे हैं आदि वाले जो सतयुग में भी राजा बनते हैं। नौवा है संगमयुग का। तो नौ जो सतयुग के महाराजाएं हैं वो, और त्रेता में तीन और ऐड होते हैं, तो कुल मिला के बार है। ये चैतन्य आत्माएं हैं कोई जो राशियों की मानिंद है। इन सारी दुनिया की आत्माओं को बारह ग्रुप में बांटा जाता है। 500 करोड़ की दुनिया का अगर छोटा रूप देखना हो तो 108 जो बीज हैं रुद्रमाला के उनमें देखा जा सकता है। तो 108 ही क्यों हुए? क्योंकि बारह के नौ ग्रुप हैं। नौ रतन माने नवग्रह, नौ श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके पीछे पीछे जैसे बारह का ग्रुप लगा हुआ है। तो बारह ने मां 108, ये नौ वो श्रेष्ठ ग्रुप हैं जो अपने अपने धर्मों का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं। एक नास्तिक धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि नास्तिक धर्म वाली आत्माएं बाप से वर्षा नहीं लेती, कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं ले पाती। राजाई उनमें चलती ही नहीं, वो राजाओं को मानते ही नहीं। जब से लेनिन स्टालिन के द्वारा रशिया में मार्क्सवाद चला, कम्युनिज्म चला, वहां के राजाओं को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, तो वो राजाई का वर्षा नहीं लेते, क्योंकि परमात्मा बाप को मानते ही नहीं, नास्तिक है, स्वर्ग को मानते ही नहीं, नरक को मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा को मानते ही नहीं, तो उनमें तो सब प्रकार के भूत रह जाते हैं। बाकी और धर्म है जो दूसरे धर्म है, पर धर्म जिनको कहा है, जिनका फाउंडेशन बाप नहीं डालते, उनमें भी कुछ न कुछ भूत रह जाते हैं। लेकिन बाप के द्वारा जिन आत्माओं को वर्षा मिलता है, डायरेक्ट बाप के द्वारा, उनमें कोई भूत उस समय नहीं रहता। तो जिनमें क्रोध आदि भूत रह जाते हैं वो वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम का भूत, काम का भूत है ये, काम के परवश हो गया है। जो कामांध हो जाता है उसको कितना भी समझाओ फिर उसकी बुद्धि में बात बैठती है। जो क्रोधांध हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है, तो उसको कितनी बात उस समय समझाओ उसकी बुद्धि में बैठती है। मोह में जो अंधा हो जाता है उसको कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में बात बैठेगी नहीं, क्योंकि अंधा है। तो परवश हो गया बाप को याद न करने के कारण, तो रावण के बस हो जाते। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण का पद नहीं पा सकते, जो वशीभूत हो जाते। तो वशीभूत किसके होना चाहिए, वश में हमेशा किसके होना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई, और वशीभूत हो जाते हैं दूसरे की माया रावण के, तो वो नारायण पद या लक्ष्मी पद नहीं पा सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट प्रसंग की बात करो, जिस बात का प्रसंग नहीं है वो बीच में नहीं शुरू करनी, बाद में पूछना। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह विमान, पांच भूत तो बाद में आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाद में, पहला कौन सा आता है, पहला आता है सब विकारों का बाप है देह विमान, देह की स्मृति। अगर देह की स्मृति ना आए तो पांच भूत नहीं आ सकते, ये देह है पांच विकारों का बाप। इसलिए रावण के चित्र में खास वो रूप दिखाया है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच सिर पुरुष मुख और पांच सिर स्त्री मुख दिखाए हैं, ऐसे ही वो देह अभिमान का रूप भी दिखाया है। कौन सा, रावण के सर के ऊपर उन दसों सिरों का बाप बैठा हुआ है गधे के रूप में, गधा देह अभिमान, देह अभिमान रूपी गधा। गधा क्या करता है, उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ वो फर्स्ट देह अभिमान की धूल में लौट जाएगा। तो देह अभिमान है सब विकारों को खींचने वाला, देह की स्मृति ही यही खराब चीज है। तो यहाँ तो परफेक्ट चाहिए, अगर देह अभिमानी हो बाप को याद करते रहे, हाँ देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करें। क्या कोई कोई तो ऐसे हैं कि देह की स्मृति छूटती नहीं, अपने को बिंदु आत्मा समझते नहीं और बाप को खींच के याद करना चाहते हैं, बिंदु को खींच के याद करना चाहते हैं तो बिंदु याद आता नहीं, उनको बाप की मदद भी नहीं मिल सकती क्योंकि देह अभिमानी। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है आत्माभिमानी होकर के। ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें ये दुश्मन न हो, कौन कौन से, पहला दुश्मन देह अभिमान, वो सच्चा ब्राह्मण। तो फिर दूसरे भी दुश्मन नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी उस समय नहीं होंगे, मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी, ये मनुष्यों को पता नहीं है कि जब शिवालय था तो कोई दुख नहीं था और जब वैश्यालय है तो दुख है। वैश्यालय में क्या होता है, एक वैश्या को सबकी पूजा करनी पड़ती है, और शिवालय में क्या होता है, एक शिव की भी सब पूजा करते हैं, तो कितना वास्ट डिफरेंट हो गया। तो अभी चैतन्य में वो शिवालय स्थापन होना है, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गिरजाघर गुरुद्वारे सब गिर जावेंगे, टूट टूट जावेंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जावेगा, एक शिवालय रह जावेगा और बाकी सब हलाक हो जाएगा। तो मनुष्य इस बात को नहीं जानते कि शिवालय है तो दुखदाम नहीं, क्योंकि वहां अभिविचारी व्यक्ति है, शिवालय में वाइब्रेशन कैसे होंगे, जब एक के ही प्रति आस्था है सबकी, एक के प्रति ही लगाव है सबका, तो वाइब्रेशन कैसे होंगे, एक मत के होंगे ना, एक धर्म एक राज्य एक भाषा के, और नहीं तो विचार होगा तो क्या होगा? और तो अनेक धर्म अनेक मतें अनेक भाषाएं हो जाएंगी, वाइब्रेशन टूटते रहेंगे, वायुमंडल खराब होता रहेगा, तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो लोग इस बात को जानते नहीं है कि शिवालय था तो कोई दुख नहीं था, और अब वैश्यालय है तो दुख ही दुख है। तो मनुष्य को पता न होने के कारण कह देते हैं कि माया भी है और ईश्वर भी है। अरे ईश्वर अपने समय पर आता है और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य और आधा कल्प है माया का राज्य। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आधा कल्प ईश्वर का राज्य। जब तक ये आस्था पक्की रहती, जब तक ये प्रैक्टिकल में रहता कि साकार में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता, तब तक है ईश्वर। और जब वो साकार में बाप अप्रत्यक्ष हो जाता, गुप्त हो जाता, तो हो जाता माया रावण का राज्य। या तो माया रावण का राज्य है या तो ईश्वर का राज्य। तो ये बातें विद्वान आदि भी नहीं जानते हैं, तो जरूर सामना करेंगे। क्या कहा? सामना क्यों करेंगे? ये विद्वान पंडित आचार्य आदि इस बात को नहीं जानते कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में आधा समय रावण राज्य चलता है और आधा समय ईश्वर का। अगर ये जाने कि अभी किसका राज्य चल रहा है, रावण का राज्य चल रहा है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी देहधारी धर्म गुरुओं का राज्य चल रहा है, एक गुरु का राज्य नहीं चल रहा। जैसे रावण के दस सिर होते हैं, दस मतों का राज्य चल रहा है। राजा के राज्य में तो राजा सर्वोपरि होता है, और सत्यों के राजाओं में और कलयुग के राजाओं में भी फर्क है। राम राज्य के राजा राजा होते हैं, वो किसी से सलाह नहीं लेते, और रावण राज्य में जैसे जैसे रावण राज्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे सलाह देने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी देख लो, कोई भी काम हल करना होगा तो पहले मीटिंग की जाएगी, मंत्री सब इकट्ठे होंगे मंत्रणा देने के लिए, फिर वो काम पास किया जाए। मम्मा बाबा जब तक थे तब तक ऐसा नहीं होता था। मुरली में भी बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को मम्मा बाबा को अपनी राय नहीं देनी, तुम बच्चों को मम्मा बाबा की राय पर चलना है। है? अभी राम राज्य है, यहाँ राम राज्य है, यहाँ राम की घरवाली के ऊपर भी राज्य नहीं होगा, बच्चों के ऊपर भी राज्य नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। क्या अभी अभी संशय बुद्धि और अभी अभी निश्चय बुद्धि, जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। जब ब्राह्मण बच्चों का जब तक जन्म मरण का चक्कर चल रहा है तो राम राज्य देवता का राज्य हुआ या रावण राज्य हुआ? माया रावण घड़ी घड़ी आकर के उनको अनिश्चय बुद्धि बनाई देती, बाप के पास में ही अनिश्चय पैदा हो जाता। तो बाप गुप्त हो गया, प्रत्यक्ष हुआ। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य, मधुबन में माया नहीं आती क्या? माया मधुबन में आती है या नहीं आती? आती है, तो मिनी मैराथन में आएगी या नहीं आएगी? फिर राज्य किसका हुआ? हाँ ये कहो कि रस्ता गति चल रही है क्या? राम राज्य और रावण राज्य की अभी रस्ता गति है, कभी राम की पाला में कभी रावण की पाला में। तो ये बातें अगर विद्वान सन्यासी आदि जानते होते कि आधा कल्प रावण का राज्य और आधा कल्प राम का राज्य चलता है, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया नहीं, तो सामना नहीं करते इसका। गुप्त देश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, उस गुप्त देश में आने वाले का सामना नहीं करते। सामना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो जानते ही नहीं कि ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ये शूटिंग चलती है, राम राज्य और रावण राज्य। शास्त्रों में इन बातों की समझानी नहीं है क्या? न उन दुनियावी शास्त्रों में इन बातों की समझानी है और न मुरली में उन बातों की समझानी है। इन बातों की तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी रावण राज्य और राम राज्य की शूटिंग होती है। तो वो शास्त्र तो नहीं भक्ति मार्ग, ज्ञान का सागर तो एक ही बात है जिसको पतित पावन कहा जाता है क्या? ज्ञान का सागर वो बात है जिसको पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला। तो बताए जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे ही पतित काम होते रहेंगे, जो पतित पावन बाप को पहचान कर याद करते हैं उनसे पतित काम नहीं होंगे। जो पतित काम करते हैं उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं कह सकते।